अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और अरुणिमा अभी भी वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी जब आस्तिक उसके पास आकर बैठता है और उसके पास एक पेपर कप में कॉफी अरुणिमा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कॉफी? अरुणिमा ने आस्तिक को देखा और धीरे से उसके हाथों से वो कॉफी का कप ले लिया। उसकी नज़र सामने के वार्ड पर जाती है। लावण्या को होश आ गया था और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। लावण्या के माता पिता अब लावण्या के साथ उसके वार्ड में थे। आस्तिक गहरी सांस छोड़ता है। उसके हाथ में भी एक कॉफी का कप था। उसने धीरे से कॉफी पी और उसे वार्ड को देखते हुए कहा, शुक्र है कि वो ठीक है। लेकिन अरुणिमा ने आस्तिक को देखते हुए बोला, शुक्र है कि तुम ठीक हो। आस्तिक अरुणिमा की तरफ देखता है तो अरुणिमा उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, मैं डर गई थी जब मुझे पता चला कि तुम पर अटैक हुआ है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुमसे इस तरीके से जुड़ गई कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक ने अपनी कॉफी साइड टेबल पर रखी और अगले ही पल आगे बढ़कर उसने अरुणिमा को अपने गले से लगा लिया। वो अरुणिमा के सर को सहलाते हुए बोला, अब कोई भी वजह मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती है। आस्तिक के शब्दों में अरुणिमा को एक सुकून दिया था और वो राहत की सांस ले रही थी। आस्तिक उससे अलग होता है और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे पेरेंट्स? अरुणिमा ने कुछ याद किया और तुरंत कहा, हाँ, दरअसल मम्मी की एक फ्रेंड है जो मुंबई में ही रहती है, इसीलिए मम्मी पापा उनके पास गए हैं। कल रात जब मैं घर से निकली तो मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए सुबह जब मैंने घर पर फ़ोन किया तो मम्मी और पापा दोनों मम्मी की फ्रेंड के घर जाने के लिए निकल चुके थे। वो आज रात कहाँ डिनर करके ही आएंगे। उसके बाद मैंने पापा को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ पर है और मेरे बारे में भी पूछा था कि मैं अचानक कहाँ चली गई, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था, वरना पापा मुझसे और सवाल करने वाले थे। आस्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो हामी में सर हिलाया। वो एक नज़र फिर से उस वार्ड को देख रहा था जिसके अंदर लावण्या थी। अरुणिमा ने भी उस वार्ड के दरवाजे को देखते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि वो किसके साथ मिली हुई है? आस्तिक ने धीरे से नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ कि इस प्लानिंग में उसके साथ कौन शामिल था। यही पूछने के लिए तो मैं उसके घर गया था, वरना तुम जानती हो मुझे अरुणिमा, किसी के घर जाकर पूछताछ करना आस्तिक रायचंद का लेवल नहीं है। लेकिन अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने धीरे से आस्तिक को देखते हुए कहा, आस्तिक, वैसे लावण्या की मम्मी ने मुझे कुछ बताया है और मुझे लगता है कि तुम्हें वो जानना चाहिए। आस्तिक एकदम से हैरान हो जाता है और उसे देखते हुए बोला, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया है? क्या बताया उन्होंने? अरुणिमा घबरा जाती है। वो जानती थी कि वो क्या बोलने वाली है, लेकिन फिर भी ये बात आस्तिक को पता होनी चाहिए ताकि वो असल अपराधी तक पहुँच सके। उसने जल्दी से आस्तिक को देखा और कहा, आस्तिक, लावण्या की मम्मी ने मुझे बताया कि जब लावण्या को गोली लगी तो उसने किसी इंसान का नाम लिया था जिसने इन सब की साजिश रची थी। आस्तिक हैरान हो गया और उसने जल्दी से कहा, क्या उस इंसान का नाम तुम्हें पता है? पता है तो चुप क्यों हो, बताओ मुझे। लेकिन अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में डर उतर आया है। आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ कस के पकड़ा और उसे देखते हुए कहा, अरुणिमा, लावण्या की मम्मी ने तुम्हें क्या नाम बताया है? तुम मुझे बात क्यों नहीं रही हो? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ताकि मैं सल्यूशन निकाल सकूं। घबराते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, लावण्या की मम्मी ने मुझे जो नाम बताया है वो है सूर्य। आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है और वो सदमे में एकदम से ब्लैंक हो जाता है। ये नाम उसे अच्छी तरह से पता है, लेकिन सूर्य का लावण्या से क्या कनेक्शन है वो ये सोच नहीं पा रहा था। उसने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि यही नाम था? अरुणिमा डरते हुए हाँ में सर हिलाती है और जवाब देती है, हाँ आस्तिक, मैं ये नाम कभी नहीं भूल सकती हूँ। सूर्य मल्होत्रा, जिसने मुझे किडनैप किया था और मुझे उस आग से जले हुए कमरे में छोड़कर भाग गया था। तुमने भी तो मुझे बताया था कि बेंगलुरु पर हम पर जो जानलेवा हमले हो रहे थे वो भी सूर्य मल्होत्रा ने ही किए हैं। आस्तिक का चेहरा एकदम से गुस्से में भड़क जाता है और उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। उसके माथे की लकीरें सामने आ गई थी और वो गुस्से में अपने दाँत पीसते हुए बोला, सूर्य मल्होत्रा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और मेरा सबसे बड़ा राइवल, ये सब उसका किया धरा है। उसने लावण्या का इस्तेमाल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आस्तिक, अरुणिमा की आवाज़ से आस्तिक उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में डर था। आस्तिक ने उसे संभाल लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए धीरे धीरे उसे शांत करवाने की कोशिश की और उससे कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आस्तिक ने धीरे से अपना सर अरुणिमा के कंधे पर रख दिया और आस्तिक उसे सहलाने लगा, लेकिन आस्तिक के दिमाग में सिर्फ सूर्य मल्होत्रा के बारे में ही बातें चल रही थी। आखिर सूर्य मल्होत्रा के इन सब के करने की वजह क्या है? क्यों वो अरुणिमा की जान का दुश्मन बना हुआ है। बेंगलुरु में भी सूर्य ने दो बार अरुणिमा पर जानलेवा हमला किया था और मुंबई आने के बाद उसने तो अरुणिमा का किडनैप करके लगभग उसे मार ही डाला था। क्या हुआ? जब आस्तिक ने देखा कि अरुणिमा शांत हो गई तो उसने अरुणिमा को घर जाने के लिए कहा, लेकिन अरुणिमा ने साफ इनकार कर दिया कि वो घर नहीं जाना चाहती है। आस्तिक आज अपनी जिंदगी के दो पहलुओं को एक साथ देख रहा था, जहां उसने अरुणिमा के साथ कितना गलत किया था, उसे कितना टॉर्चर किया था और मेंटली कितना हरास किया था, पर उसके बावजूद आज अरुणिमा उसके साथ थी और उसे सपोर्ट करना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ लावण्या उसकी स्कूल की दोस्त थी जिसके साथ उसने कई अच्छी यादें बनाई थी, उस पर भरोसा किया था और उसी ने उसे धोखा दिया था। काफी देर हो गई थी, लावण्या को फिर से बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था और वो फिर से बेहोशी की नींद में सो रही थी, लेकिन अरुणिमा भी काफी ज्यादा थक गई थी, इसीलिए आस्तिक ने उसके लिए एक वेटिंग रूम में बेड अरेंज करवाया और उसे आराम करने के लिए कहा। अरुणिमा बेड पर पड़ते ही सो गई थी, वो इतनी ज्यादा बैठे बैठे थक गई थी, ऊपर से प्रेगनेंसी की वजह से भी उसे ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। जैसे ही अरुणिमा नींद में जाती है उसे एक हल्का हल्का सा दृश्य नजर आता है और वो हल्की हल्की नींद के झरोखों से किसी सपनों की दुनिया में खो जाती है। अरुणिमा इस वक्त एक लकड़ी के घर के सामने खड़ी थी। ये लकड़ी का घर काफी पुराना था लेकिन अरुणिमा इसे कई बार देख चुकी थी। दरअसल ये उसका ट्री हाउस था। जब वो अपने मम्मी पापा के घर बेंगलुरु में रहा करती थी तब उनके फार्म हाउस पर एक बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर अरुणिमा ने ट्री हाउस बनाया हुआ था, लेकिन उसे ये ट्री हाउस बहुत पसंद था। वो इसके अंदर अपनी गुड़ियों के साथ खेला करती थी और वो खुद को अपने बचपन में महसूस करती है। उसने इस समय अपने बचपन वाली फ्रॉक पहनी हुई है और वो मुस्कुराते हुए अपने ट्री हाउस की तरफ बढ़ रही है।
उसके एक हाथों में एक टुकड़ी थी जिसके अंदर उसकी सारी गुड़िया और उसके खेलने के टॉय थे और वो खुद के खेलते हुए अपने ट्री हाउस की तरफ जा रही थी, जब उसने एक वायलिन की आवाज़ सुनी। अरुणिमा हैरान हो गई, ये वायलिन की आवाज़ कहाँ से आ रही है, आसपास तो कोई भी नहीं है। तभी उसकी नज़र अपनी ट्री हाउस पर जाती है। वहाँ पर कोई लड़की बैठी हुई है जिसकी पीठ अरुणिमा की तरफ है और वो वायलिन बजा रही है। अरुणिमा हैरान हो गई कि वो लड़की कौन है जो उसके ट्री हाउस पर बैठी हुई है। अरुणिमा धीरे धीरे अपने ट्री हाउस की तरफ बढ़ रही थी। उसने देखा वो लड़की अभी भी इस ट्री हाउस के किनारे पर पैर लटकाकर बैठी हुई है और वायलिन बजा रही है। लकड़ी की सीधी का सहारा लेकर अरुणिमा धीरे धीरे करकर अपनी ट्री हाउस पर जाती है और वो देखती है वो लड़की अभी भी ट्री हाउस के किनारे पर बैठी हुई है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत तरीके से वायलिन बजा रही है। अरुणिमा कभी इतना खूबसूरत वायलिन नहीं बजा पाती है। ये करना हमेशा से उसका सपना रहा है कि एक दिन वो भी इतना ही खूबसूरत वायलिन बजाएगी। उसके पास वायलिन है लेकिन वो कभी उसे ढंग से बजा ही नहीं पाती है, पर ये लड़की तो बहुत खूबसूरत तरीके से वायलिन बजा रही है। जैसे ही अरुणिमा उस लड़की के पास पहुंचती है उसने लड़की को आवाज़ देते हुए कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो और तुम तो बहुत अच्छा वायलिन बजा रही हो, क्या तुम मुझे भी वायलिन बजाना सिखाओगी? वो लड़की जो ट्री हाउस के किनारे पर बैठी हुई थी और वायलिन बजा रही थी अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं और वो एकदम से खड़ी हो जाती है। उसने पलटकर अरुणिमा को देखा तो अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। वो हैरानी से उस लड़की को देख रही थी, लेकिन अगले ही पल वो छोटी सी लड़की एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ हवा में लहराती है और पीछे की तरफ पलट जाती है। अरुणिमा एक चीख के साथ उठ जाती है। उसके सामने वो छोटी लड़की ट्री हाउस से नीचे कूद गई और उसके सर से खून निकलने लगा। अरुणिमा एकदम से घबरा गई। वो जल्दी से उठकर तेजी से सांस लेने लगती है। इस समय अस्पताल के वेटिंग रूम में आराम कर रही थी। जब आस्तिक ने उसकी चीख सुनी तो वो जल्दी से उसके पास आता है। वो पसीने से चल रहा था लेकिन अरुणिमा का चेहरा पसीने से भरा हुआ था। आस्तिक अरुणिमा को संभालते हुए बोला, अरुणिमा अरुणिमा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? आस्तिक, वो लड़की, वो लड़की, अरुणिमा घबराई हुई आवाज में हकलाते हुए इतना कहती है और उसका हाथ हवा में सामने की दिशा को दिखा रहा था। आस्तिक को पता चल गया कि अरुणिमा ने कोई डरावना सपना देखा है। वो अरुणिमा के सर को सहलाता है और उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए उसे थपथपाते हुए बोला, घबराओ मत, शांत हो जाओ, ये बस एक सपना था। लेकिन अरुणिमा डरती हुई नज़रों से आस्तिक को देखती है और नामी सर हिलाते हुए बोली, नहीं आस्तिक, ये सिर्फ सपना नहीं था, ऐसे सपने मुझे पहले भी आए हैं, शादी से पहले भी मुझे ऐसे सपने आते थे और ये बहुत डरावने हैं, पर पिछले एक साल से मुझे ये सपना नहीं आ रहा था और आज अचानक से मुझे ये सपना फिर आने लगा। वो लड़की जो मेरे सामने ट्री हाउस से गिर गई थी, उसका पूरा सर खून से भर गया था।